अंशु आई थी मेरे पास, फिर तो परेशान हो गई होगी। अभी कहाँ है वो? मैं मिल लेती हूँ उससे, कहीं नाराज ना हो जाए मुझसे। आरवी परेशान सी निगाहें घुमाकर अंशु को ढूंढने लगी। अब की बार सुभाष जी बोले, बेटा आप परेशान मत होइए, अंशु आपसे नाराज नहीं है और इस वक्त स्कूल में है। आपको जगाने गई थी पर आप उठी नहीं, तो हमने उनको समझाया कि आपकी तबीयत खराब है तो आप आराम कर रही हैं। आपकी बेटी को आपसे इतना प्यार है कि उसके बाद उन्होंने आपको परेशान नहीं किया, आपसे मिलने की जिद भी नहीं की और ड्राइवर के साथ स्कूल भी आराम से चली गई। अंशु के बारे में सुनकर आरवी के लबों पर एक बार फिर मुस्कान ठहर गई। बड़े दिनों बाद आरवी को इतना खुश देखकर सभी खुश हो गए। बेटा अब आप आ गई हैं तो नाश्ता कर लीजिए, हम आपका नाश्ता मंगवा देते हैं। नाश्ता का सुनकर आरवी को एहसास हुआ कि भूख तो उसको जोरों की लगी थी, बीते कुछ दिनों से ठीक से खाया पिया नहीं था और कल रात तो मन ना होने की वजह से बिल्कुल ही नहीं खाया। आज भी सुबह इतनी देर हो गई थी तो पेट में चूहे क्रिकेट खेलने लगे थे। आरवी ने बिना नानुकुर किए हामी भर दी और उनके पास बैठ गई। अर्पिता जी ने छाया को आरवी का नाश्ता लाने को कह दिया तो वो वहां से चली गई। सुभाष जी जो आरवी को बड़े दिनों बाद ऐसे तैयार हुए देख रहे थे और उसके चेहरे पर अलग ही खुशी और नूर छलकते देख रहे थे, उन्होंने बड़े ही प्यार से पूछा, बेटा कहीं जा रही हैं आप? आरवी ने निगाहें घुमाकर उन्हें देखा और मुस्कुराकर बोली, जी डैड, आज से रिहर्सल फिर से शुरू है ना, बस इसलिए स्टूडियो जा रही थी। आज तो आपका चेहरा खिला खिला लग रहा है, बड़े दिनों बाद आपको ऐसे मुस्कुराते देखकर अच्छा लगा, हंसती मुस्कुराती रहा कीजिए, घर में रौनक रहती है। सुभाष जी की बात सुनकर आरवी एक बार फिर मुस्कुरा उठी। अर्पिता जी ने उसकी नज़र उतार ली। इतने में छाया खाना ले आई। कई दिनों बाद आज आरवी ने सबसे अच्छे से दिल खोलकर बात की और फिर नाश्ता करके घर से निकल गई। सारे रास्ते वो बार बार घड़ी देखती रही क्योंकि वो बेताब थी शान से मिलने के लिए। कुछ आधे पौने घंटे बाद कार स्टूडियो के बाहर रुकी तो आरवी झट से कार से बाहर निकली और स्टूडियो के अंदर चली आई जहां रिहर्सल की तैयारी हो रही थी। वो कुछ कदम अंदर आई ही थी कि रश्मि दौड़ते हुए उसके पास आ गई और उसके गले से लगकर बोली, तू आ गई, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी, कैसी है तू? आखिरी का सवाल उसने आरवी से अलग होते हुए किया और चिंता भरी नजरों से उसको देखने लगी। आरवी ने उसे परेशान देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू चिंता मत कर। रश्मि कुछ पल खामोशी से उसके चेहरे को देखती रही, फिर भौंई से कोड़ते हुए बोली, आरवी आज तू बड़ी खुश नजर आ रही है, चेहरा ऐसे जगमगा रहा है जैसे अंधेरी रात में जुगनू चमकते हैं, क्या बात है? रश्मि के सवाल को सुनकर आरवी को लात शान के साथ बिताए हसीन पल याद आ गए। एक बार को उसने सोचा कि अपनी खुशी में उसको भी शामिल कर ले, फिर ये सोचकर पीछे हट गई कि अगर उसको पता चला कि शान शराब के नशे में उसके करीब आया और उसने आने भी दिया तो कहीं वो उससे नाराज ना हो जाए या कहीं शान को लेकर उसकी नाराजगी ना बढ़ जाए। उसने अभी उसको ये बताना ठीक नहीं समझा और कुछ देर अच्छे से सोचने के बाद मुस्कुराकर बोली, बस फिर से रिहर्सल शुरू हो गई इसलिए खुश हूँ, वरना इतने दिनों से घर में बंद बंद ऊब गई थी। रश्मि को कहाँ इतनी आसानी से उसके झूठ पर विश्वास होने वाला था। वो शक भरी नजर से आरवी को घूरने लगी जिससे आरवी थोड़ा नर्वस हो गई कि कहीं वो उसकी चोरी ना पकड़ ले। आरवी रश्मि से बचने के रास्ते खोज रही थी तभी अचानक रेहान वहां उसका सेवियर बनकर आ गया और आरवी को देखकर मुस्कुराकर बोला, कैसी हैं भाभी आप, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे। असल में शान ने वेहान वाली बात रेहान को भी नहीं बताई थी और आरवी ने भी रश्मि को किसी को बताने से मना किया था, इसलिए उस इंसिडेंट के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। वो आरवी के साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। वहीं आरवी तो उसको देखकर बड़ी ही खुश थी, आखिर उसको अपने बचने का जरिया जो मिल गया था। उसने झट से मुस्कुराकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं और सृष्टि कैसी है? मैं भी ठीक हूँ और सृष्टि भी मस्त है अपनी जिंदगी में, रेहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आरवी कुछ सेकेंड चुप रह गई, फिर आसपास निगाहें घुमाते हुए बोली, वैसे आपके दोस्त कहीं नजर नहीं आ रहे, आजकल मिस्टर इंडिया बने रहते हैं, आपने देखा उन्हें? आरवी ने जिस तरह से शान के बारे में सवाल किया, रश्मि और रेहान दोनों आंखें बड़ी बड़ी करके उसको देखने लगे, जबकि आरवी बेचैनी से निगाहें घुमाते हुए शान को ढूंढने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी क्योंकि वो मिलता तो तब जब यहाँ होता। रेहान कुछ सेकंड तक हैरानी से उसको देखता रहा, फिर थोड़ा कन्फ्यूजन भरे लहजे में बोला, भाभी आपको नहीं पता? क्या नहीं पता मुझे? आरवी ने तुरंत निगाहें घुमाकर उसको देखा। उसका सवाल सुनकर रेहान ने एक नज़र रश्मि को देखा जो मुंह बनाए खड़ी थी, फिर आरवी को देखकर गंभीरता से बोला, वो शान यहाँ नहीं है, यूएसए में हमारा एक प्ले होने वाला है, उसी सिलसिले में गया है। पहले मैं जाने वाला था पर पता नहीं अचानक उसको क्या हुआ, सुबह सुबह मुझे मैसेज किया कि वो जाएगा और सुबह की ही फ्लाइट से चला गया। आरवी ने जैसे ही ये सुना उसके चेहरे के भाव बदल से गए। उसने व्याकुलता से अगला सवाल किया, वो कब तक वापस आएंगे? पता नहीं भाभी, हो सकता है एक दो हफ्ते में लौट आए या फिर प्ले होने के बाद ही आए, अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि उसके मूड का कोई भरोसा नहीं है। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से हमेशा गुस्से में और परेशान ही रहता है, पूछने पर कुछ बताता भी नहीं है। आप जानती हैं क्या कि आजकल वो क्यों इतना परेशान रहता है? शान इन दिनों गुस्से में और परेशान रहता है ये सुनकर आरवी का मन खुशी से नाच उठा, पर उसने उसे जाहिर नहीं होने दिया और अनजान बनते हुए इनकार में सर हिला दिया। रेहान शान के बारे में सोचने लगा, तभी उसके कानों में आरवी की आवाज पड़ी, अगर वो यहाँ नहीं है तो फिर रिहर्सल कैसे होगी? उसकी जगह मैं आपके साथ रिहर्सल करूंगा, वैसे भी उसकी एक्टिंग स्किल्स बहुत बढ़िया हैं, वो एक बार में ही परफेक्ट रोल कर लेगा, पर आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो जब तक वो नहीं आ जाता आपको मेरे साथ ही रिहर्सल करनी होगी। आरवी ने रेहान की बात सुनकर सर हिला दिया और मन ही मन बोली, मुझे नहीं पता था कि खुद को इतना सख्त दिखाने वाले आप इतने कमजोर हैं, मेरा सामना ना करना पड़े इसलिए देश छोड़कर ही भाग गए, पर कब तक दूसरे देश में रहेंगे, वापस तो आपको लौटना ही होगा, उसके बाद मैं आपकी मुलाकात आरवी शांतनु मल्होत्रा से करवाऊंगी और फिर देखूंगी कि कैसे आप मुझे नहीं अपनाते। आरवी के लबों पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। कुछ देर में रिहर्सल शुरू हो गई। सारा दिन आरवी सबके बीच रही, पूरे क्रू मेंबर से उसकी काफी जान पहचान हो गई थी। हिटलर मतलब शान यहाँ नहीं था तो रिहर्सल के दौरान खूब हंसी मजाक भी चल रहा था। शाम हुई तो आरवी घर के लिए निकल गई जहाँ अंशु उसका इंतजार कर रही थी, बाकी का वक्त उसने उसके और अपने परिवार के साथ बिताया, फिर सब खाना खाकर सोने चले गए। आरवी ने आज अंशु को अपने पास सुला लिया था और उसके सोने के बाद शान की फोटो से देर रात तक बात करने के बाद वो सोई थी। यूं ही वक्त गुजरने लगा था। शान को गए लगभग एक महीना होने वाला था, उसका कोई फोन नहीं आया था और ना ही उसका फोन ही लग रहा था। आरवी तो उसको मिस कर ही रही थी पर अंशु भी उसको बहुत याद करती थी। इस एक महीने में आरवी ने खुद पर काफी काम किया था, एक्टिंग अच्छी करने लगी थी, अंशु और बाकी सबके साथ भी वक्त बिताती थी, बीच में दो तीन बार अनुपमा जी से मिलने भी गई थी, अर्जुन से भी एक दो बार मिली थी।
सारा दिन तो जैसे तैसे कट जाता पर रात काटनी भारी पड़ती थी। अक्सर शान की तस्वीर से बात करती थी, जब ज्यादा याद आती तो उसकी शर्ट को अपने सीने से लगाकर सो जाती, जिससे उसको एहसास होता कि शान की बाहों में है, क्योंकि उसकी शर्ट में शान की खुशबू समाई हुई थी। आरवी उसकी वापसी का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी, पर शान था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था और अब आरवी को उस पर गुस्सा भी आने लगा था। आखिर में परेशान होकर कल आरवी ने कार्तिक से शान का बिजनेस नंबर ले लिया था और अब वो कुछ बड़ा करने वाली थी। यहाँ मुंबई में रात के 3 बज रहे थे। आरवी ने अपने बगल में सो रही अंशु को देखा, फिर उसको अपनी गोद में उठाकर पुचकारते हुए बोली, अंशु बेटा आंखें खोलिए। अंशु नींद में कुनमुनाई और फिर वापस उसके सीने से लगकर सो गई, पर आरवी ने हार नहीं मानी, उसने उसको उठाया और कुछ देर बाद जाकर अंशु की नींद कुछ खुली और उसने उनींदी आंखों से उसको देखते हुए कहा, मम्मा बेबी को नीनू आई है। बेटा आप डैडी को मिस करती है ना? अंशु ने मायूस सी शक्ल बनाकर झट से हाँ में सर हिला दिया तो आरवी ने आगे कहा, बेटा अगर आपने मम्मा की बात मानी और जैसे मम्मा ने कहा वैसे ही किया तो कल आपके डैडी वापस आ जाएंगे। अब बताइए आप चाहती हैं ना कि डैडी वापस आए? अंशु ने एक बार फिर झट से हाँ में सर हिला दिया, यस मम्मा बेबी डैडी को बहुत मिस करती है, आप जो कहेंगी बेबी वही करेगी, बस आप डैडी को वापस ला दीजिए। अंशु की बात सुनकर आरवी मुस्कुरा उठी, उसने उसको कुछ समझाया और अंशु मान भी गई। आरवी ने अपने फ़ोन से झट से शान के बिजनेस नंबर पर फ़ोन लगा दिया। मुंबई में रात के 3 बज रहे थे पर वॉशिंगटन में दोपहर के 1 बज रहे थे। कुछ देर पहले ही इन्वेस्टर्स से मीटिंग करके आया था शान और अब अपने होटल रूम में आराम कर रहा था। तभी अचानक उसका फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन निकाला और जब स्क्रीन पर आरवी नाम चमकते देखा तो चेहरे पर हैरानी भरे भाव उभर आए। शान ने टाइम देखा, फिर इंडिया के टाइम का अंदाज़ा लगाया और इसके साथ ही उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अगर नॉर्मल वक्त पर आरवी ने फ़ोन किया होता तो शायद वो नहीं उठाता, पर इंडिया के हिसाब से आधी रात हो रही होगी। इस वक्त आरवी का उसको फ़ोन करना उसके लिए चिंता का कारण बन गया। उसने कुछ सेकंड सोचने के बाद कॉल रिसीव कर लिया, पर वो कुछ कह पाता उससे पहले ही दूसरी तरफ से अंशु की रुंधी हुई आवाज़ आई,
डैडी।
अंशु की आवाज़ सुनकर शान के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए, साथ ही कुछ परेशान भी हो गया। उसने तुरंत ही चिंता भरे स्वर में कहा, हाँ बेटा डैडी बोल रहे हैं, क्या हुआ बेटा आप रो रही हैं?
डैडी बेबी को फीवर हो गया है, बेबी को आपके पास आना है, बेबी को आपकी बहुत याद आ रही है, डैडी आप कब वापस आएंगे, बेबी आपको टू मच मिस कर रही है।